ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अबुजा में नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू से वार्ता करेंगे। दोनों नेता रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के अन्य उपायों पर चर्चा करेंगे। वार्ता के बाद कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। श्री मोदी तीन देशों नाइजीरिया, ब्राजील और गयाना की 5 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल नाइजीरिया पहुंचे। प्रधानमंत्री यात्रा के दूसरे चरण में कल ब्राजील जाएंगे, जहां वे G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे और हाल ही में भारत में आयोजित G20 और वॉयस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के परिणामों की भी चर्चा करेंगे। अपनी यात्रा के तीसरे और अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 19 से 21 नवंबर तक गयाना की राजकीय यात्रा करेंगे। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर है। विभिन्न राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता दोनों राज्यों में चुनाव प्रचार में जुटे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह का आज गढ़चिरौली, वर्धा और नागपुर में चुनावी रैलियों का कार्यक्रम है। एनसीपी अध्यक्ष अजीत पवार अहिल्यानगर, पुणे, सतारा और कोल्हापुर में जनसभाएं करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नागपुर, कोल्हापुर और सांगली में चुनाव प्रचार करेंगे। एनसीपी एससीपी अध्यक्ष शरद पवार पुणे और रायगढ़ में चुनाव प्रचार करेंगे। शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे पालघर और सतारा में चुनाव प्रचार करेंगे। उधर झारखंड में राजनीतिक दलों के नेता मतदाताओं को लुभाने के प्रयास में जुटे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का आज गोमिया, सिंदरी और नाला में चुनावी रैलियों का कार्यक्रम है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का राज्यभर में रैलियां करने का कार्यक्रम है। कांग्रेस राज्य में कई सभाएं करने वाली है। राजद नेता तेजस्वी यादव भी धनबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र और झारखंड में प्रचार समाप्त होने में 2 दिन शेष हैं। महाराष्ट्र में एक चरण और झारखंड में दूसरे तथा अंतिम चरण का मतदान 20 नवंबर को होगा। दोनों राज्यों में मतगणना 23 नवंबर को होगी। भारतीय संचार उपग्रह GSAT-20 का प्रक्षेपण मंगलवार को अमेरिका के केप कैनेवरल से किया जाएगा। GSAT-20 उपग्रह के 14 वर्षों तक परिचालन में रहने की आशा है। ये पूरे भारत में महत्वपूर्ण रूप से इंटरनेट सेवाएं प्रदान करेगा। चीन में जियांगसू प्रांत में एक स्कूल में चाकू से किए गए हमले में 8 लोगों की मौत हो गई है और 17 घायल हो गए। घटनास्थल पर एक संदिग्ध को पकड़ा गया है, उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। चीन में इस सप्ताह नागरिकों पर होने वाला ये दूसरा हमला है। इसराइली सेना रणनीति के तहत पिछले 6 सप्ताह में लेबनान में काफी अंदर तक प्रवेश कर गई है। सेना ने इसराइल की सीमा से 5 किलोमीटर दूर चामा गांव में महत्वपूर्ण स्थान पर कब्जा किया। लेबनान की राष्ट्रीय समाचार एजेंसी ने कहा है कि इसराइली सेना ने चामा में पैगंबर शिमोन के धार्मिक स्थल और कई घरों को नुकसान पहुंचाया है। इसराइली सेना का कहना है कि दक्षिणी लेबनान में उसका अभियान सीमित, स्थानीय और लक्षित था। अमेरिका ने भारत को $10 मिलियन की 1400 से अधिक लूटी गई कलाकृतियों को लौटाने की घोषणा की है। इनमें वो वस्तुएं भी शामिल हैं जो हाल ही में न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में प्रदर्शित की गई थीं। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कल श्रीनगर के शेर कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में 2 दिवसीय CSIR हेल्थ केयर थीम कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। ये सम्मेलन वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के 1 सप्ताह एक थीम OWOT अभियान के तहत आयोजित किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में नवाचार और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और केरल में आज गरज के साथ तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी राजस्थान में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। इसके अलावा मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम, पश्चिम और मध्य भारत में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट का अनुमान व्यक्त किया है। महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में भारत का अंतिम ग्रुप स्टेज मैच आज जापान से होगा। मैच बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम में शाम 4:45 से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।